बीमार है तरबूज और अधिक जीना चाहता है, किंतु जब उसकी आयु समाप्त होगी तो किसी हालत में वो जी नहीं सकता। तो दोनों प्रकार से इच्छा करना मूर्खता है। मरने की इच्छा करने से तो जल्दी मरता नहीं, और जीने की इच्छा करने से विशेष समय तक जीता नहीं। तिल घटे नराई भले, जिस समय मरना है उसी समय मरेगा वो। तो उस इच्छा करना तो व्यर्थ ही है, इच्छा करने से कोई कार्य किसी दिन तो होती नहीं। इच्छा करके अपनी बेइज्जती करानी हो तो करा लो। जब अपने को मालूम है कि ये चीज हमारे को मिलनी संभव नहीं, उसकी मांग पेश करनी मूर्खता है। अपनी बेइज्जती करानी है संसार के बीच के मां। लोग नाना प्रकार की इच्छा करते हैं, कोई किसी की कभी तुक पीजा बाबा तो दूसरी है, किंतु इच्छा से थी कोई इच्छा की पूर्ति हो जाए, इच्छा करने से इच्छा की पूर्ति हो जाए संभव नहीं है। और इच्छा करने से हमारा कलंक लगता है, हमारा पतन हो जाता है, हमारे स्वार नुकसान के कोई भी फायदा नहीं है इच्छा करने से। तो ऐसी मूर्खता क्यों करनी चाहिए? अपने तो कोई बात की इच्छा करनी नहीं, जो कुछ हो रहा है बस अपना देखते रहो, जो कुछ हो रहा है देखते रहो। जो अनिच्छा से और परिच्छा से कार्य हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष के मां भगवान का विधान है, इसलिए जो भी कुछ हो रहा है इष्ट या अनिष्ट अपने सबके बीच के मां आनंद मानना चाहिए। यदिचा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर सम सिद्ध व सिद्ध से कृत्वा पीने निबद्धते। भगवान ने गीता में कहा 4वें अध्याय के 20वें श्लोक में ये बात कही कि यदिच्छा माने ईश्वर की इच्छा से जो भी कुछ आकर के प्राप्त हो जावे उसी में संतुष्ट रहना, यानी एक प्रकार से आनंद मानना, जो भी कुछ आकर प्राप्त हो जाए उसी में। और द्वंद्वों से रहित होकर रहना, द्वंद्व माने हर्ष शोक से रहित, राग द्वेष से रहित, सुख दुख से रहित, इस प्रकार से द्वंद्वों से रहित होना और मत्सरता से भी रहित होना, ईर्ष्या भी किससे नहीं करनी। कार्य की सिद्धि असिद्धि में सम भाव रखना, ऐसा पुरुष कर्म कर करके भी नहीं बंधता है। तो यह बहुत ही एक प्रकार से उच्च कोटि की बात है। फिर आपको मैं बता देता हूं अनिच्छा परिच्छा के। जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कोई भूमिकंप हो गया या कोई बिजली गिर गई और हमारे चोट आ गई, तो ये किसकी इच्छा हुई? किसी की नहीं, हरी इच्छा। इसके ऊपर हम दुख करें तो मूर्खता है। किसी का भी दोष नहीं है, ये दोष है एक प्रकार से हमारा। कोई भी कार्य अनिच्छा से या परिच्छा से होता है तो वो एक भगवान का विधान है। जैसे कोई डाकू ने आकर के हमारे चोट लगा दी और हमारे से रुपये छीन लिए, तो ये हमारा अनिष्ट हुआ। इसमें हेतु हुआ डाकू, डाकू की इच्छा से ये चीज हुई, तो ये परीक्षा से थी, हमारे पाप का भोग हुआ। तो परीक्षा से अनिच्छा से जो कुछ एक प्रकार से हमारे मन के विरुद्ध होता है उसमें भगवान का विधान है पहले से, तो भगवान का हुक्म मान करके और खूब ही खुश होना चाहिए इसके बीच के बाद। और स्वेच्छा पूर्वक जो कार्य किया जावे वो भगवान की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। तीन ही तो इच्छा है, अनिच्छा परिच्छा स्वेच्छा। अनिच्छा और परिच्छा के मां तो हमारा कुछ बस भी नहीं चल सकता, और जो होना है सो अचानक हो जाएगा। हम चाहे दुख करें चाहे मन के मां सुख माने, वो तो जो अवश्य भावी होना है सो ही होगा। तो इसलिए हम लोगों को कोई बात की इच्छा करनी ही नहीं थी। इच्छा करना अपने कलंक लगाना है, अपना उसमें पतन है। तो क्या करना चाहिए कि भगवान के घर का बाइस्कोप हो रहा है, यानी भगवान के घर का ये एक लीला हो रही, तो इसको लीला समझ करके हर वक्त आनंद के मां मुग्ध होना चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है संसार के बीच के मां, उसको भगवान की लीला समझ करके और क्षण क्षण के मां खुश होना चाहिए। तो बहुत ही ऊंचे दर्जे की बात है। और अपने द्वारा जो कुछ हो रहा है, जब तक अपने और पराये का ज्ञान है तब तक तो अपने द्वारा होने वाली क्रिया भगवान के हुक्म के अनुसार ही होनी चाहिए। गीता जो है और शास्त्र है, इनके अनुकूल ही हमारी सारी क्रिया होनी चाहिए। और इससे भी ऊंचे दर्जे की चीज वो है कि हमारे द्वारा कोई क्रिया हो रही है तो उसके मां हम कर्ता बने क्यों? हमको तो दृष्टा साक्षी रह करके देखते रहना चाहिए। जैसे परीक्षा और अनिच्छा से होने वाले कार्यों को देख रहे हैं और हंस रहे हैं और ये मान रहे हैं कि भगवान का विधान है, ये भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है, भगवान एक प्रकार से हमारी परीक्षा कर रहे हैं कर्मों का फल भुगता करके। ऐसा समझ समझ करके हमको हर वक्त खुश रहना चाहिए। और अपने इच्छा से तो कोई काम करना ही नहीं, करना तो भगवान की आज्ञा के अनुसार करना जो बंधन का हेतु न हो। हम भगवान की आज्ञा के अनुसार करते हैं तो उसका फल भगवान की प्राप्ति है। कि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मुवाप्स्यसि, हे अर्जुन मेरे अर्थ कर्म करता हुआ भी पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, यानी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो देखो करना तो ऐसा ही करना। हमारे द्वारा होने वाली क्रिया किस प्रकार से करनी चाहिए, जो कि हमारे मुक्ति देने वाली होए, कल्याण करने वाली होए। एक तो हम जो कर्म करें समभाव से करें, जैसे भगवान ने गीता में कहा है सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युष्वे नैवं पापमुवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब में समान होकर के हे अर्जुन तू युद्ध कर, युद्ध को कर्तव्य समझ करके युद्ध के लिए ही युद्ध कर, तो फिर तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो एक तो ये बात समभाव से कार्य करना चाहिए, कोई भी काम हो तो हृदय में समता रख करके करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इच्छा का त्याग करके करना चाहिए, फिर भी आत्मा का कल्याण हो जाता है। फल की इच्छा का त्याग करके जैसे अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति है से सन्यासी से योगी से न निर्गणित न चाहिए, जो कर्म के फल को न चाहता हुआ और कर्तव्य कर्म का पालन करता है वही योगी है और वही सन्यासी है। अग्नि के त्यागने वाला और केवल क्रिया के त्यागने वाला ही योगी सन्यासी नहीं है। दूसरी बात यह है कि केवल क्रिया और अग्नि के त्यागने से ही सन्यासी नहीं होता है, भीतर का जो भाव है, भीतर में जो ज्ञान है और भीतर का जो त्याग है वही सन्यासी है। और इससे भी ऊंचे दर्जे की बात वो है कि हम कर्म करें, हमारे में कर्तापन रहो, किंतु हम कर्म करें भगवत अर्थ कर्म करें, भगवान के लिए करें, तो वो बंधन का हेतु नहीं होता। भगवान के अर्थ जैसे कोई रुपया का लोभी, व्यवसायी, दुकानदार दुकान करता है और प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक खूब ही परिश्रम करता है, जो कोई माल देने के लिए आता है तो लेने के लिए आता है तो उसकी यही नजर रहती है कि रुपया कैसे मिले, रुपया कैसे मिले, रुपया कैसे मिले। जिस काम में नुकसान मालूम होता है उसके नजदीक नहीं जाता, रुपया ही उसके समझो कि अपने साक्षात प्राण है। तो इसी प्रकार से हम धन की जगह में भगवान को रखें। जैसे लोभी आदमी धन के लिए रात दिन भागता है, इसी प्रकार से हम भी भगवान के लिए रात दिन कर्म करें। जैसे लोभी आदमी और किसी की भी परवाह नहीं करता, वो रुपयों का एक निष्ठ भक्त है, तो इसी प्रकार से भगवान का एक निष्ठ भक्त होना चाहिए, तो फिर बेड़ा पार। और इससे भी ऊंचा दर्जा वो है कि हम जो कर्म जो है सो अपने प्रकृति में या परमात्मा में समर्पण कर देवें, तो बहुत ही ऊंचे दर्जे की बात है। प्रकृति में समर्पण करना क्या कि प्रकृति कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्नते तब तभी तुम महाभाव गुण कर्म विभाग हो गुणा गुणे सुवर्तनते इति मत्वा न सज्जते। ये प्रकृति के बीच में समझो कि कर्मों का समर्पण करना है। प्रकृति कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वस्य कहते प्रकृति प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है उनके द्वारा ही सारे कर्म होते हैं। और अहंकार भी मूढ़ आत्मा पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, जो कैसी मूर्खता की बात है, ये तो प्रकृति से अपने आप ही कर्म हो रहे हैं। प्रकृति से उत्पन्न जो गुण, अरे गुणों का सत्रह तीनों गुणों का ही विस्तार सारा संसार है, तो प्रकृति से उत्पन्न गुण के द्वारा सारी क्रिया होती है, किंतु अहंकार भी मूढ़ आत्मा ऐसा मान बैठता है कि मानो मैं करता हूं, तो ये उसकी मूर्खता है। ये तो उधारी राड लेनी है रास्ते चलते, कोई लेन उनको दे, अपना प्रयोजन ही क्या है। प्रकृति अपना कर्म कर रही है, इससे पुरुष का कोई संबंध ही नहीं। गुणा गुणेश वर्तनते इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव तत्ववेत्ता जो पुरुष है, तत्ववित महाभाव गुण कर्म विभाग हो गुणा गुणेश वर्तनते इति मत्वा न सज्जते। गुण और कर्म के विभाग के जानने वाले जो तत्ववेत्ता पुरुष है, वे ऐसा समझते हैं कि गुण गुणों में बढ़ते हैं, ऐसा समझ करके वो आसक्त नहीं होता कि जैसे गुण क्या है कि इंद्रियां भी गुण और उनका विषय भी गुण, तो इंद्रियां अपने विषयों में विचर रही है ऐसा मानता है। इंद्रियां इंद्रिया तेसु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियां अपने अर्थों में वर्त रही है इस प्रकार से समझ कर धारण करके। और नहीं किंचित करो विति युक्तो मन्ने तत्ववित, तत्ववित ऐसा माने कि युक्त जो तत्ववेता ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। अब यह बात प्रत्यक्ष है, संसार के बीच में आंख देखती है और ये कहता मैं देखता हूं, कितनी मूर्खता है। कान सुनते हैं कहता मैं सुनता हूं। तो इसी प्रकार से सारी क्रिया इंद्रियों के बीच के हो रही है, अपने को तो दृष्टा साक्षी होकर के ये सब तमाशा देखते रहना चाहिए। इस प्रकार से प्रकृति के जो मनुष्य समर्पण कर देता है सारे कर्मों को, तो वो फिर मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से थी जो भगवान के समर्पण कर दे तो और भी उत्तम बात है। भगवान के मां अर्पण कर दी अपने आप को और अपने सारे कर्मों को, जैसे चेष्टा सर्व कर्माणी मई सन्य से मत पर बुद्धि योग वासित मचित सप्तंग भव। कठपुतली जिस प्रकार से थी सूत्रधार के प्रति अपने सारी क्रियाओं को और अपने आप को अर्पण कर देती है, माने अर्पण पहले से किए हुए हैं, वो तो जड़ है, क्या अर्पण करेगी। तो सूत्रधार समझो कि सोंगी आपने उसको अपने अधिकार के मां ले रखी है कठपुतली को, और जो न चाहता है जो नाती है, और उसका नतीजा जो फल है वो भी सूत्रधार पर निर्भर करता है। तो हमारे सूत्रधार भगवान, तो जैसे कठपुतली अपने सूत्रधार को अपनी सारी क्रिया अपने शरीर को पहले से अर्पण कर रखा है, यानी किया हुआ ही है, इसी प्रकार से हम लोगों के भी समझो कि सारे कर्म और हमारा शरीर भगवान के समर्पण पहले से ही है। हम एक प्रकार से मान लिए अलग, ये हमारी गलती हुई। तो ये भगवान की चीज भगवान को सौंप दे में, या प्रकृति की चीज प्रकृति को सौंप दे में, ये हमारा जो स्थूल शरीर है और एक प्रकार से हमारा जो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, ये सब प्रकृति का विकार है, प्रकृति की चीज है। इसलिए प्रकृति की चीज हम प्रकृति को सौंप दे में तो पापों से बच जाओ, फिर हमारे द्वारा कोई पाप होने का ही नहीं। और पाप होता है तो ये समझना चाहिए कि हमने प्रकृति को सौंपा नहीं। और यदि हम भगवान को सौंप दे तब तो फिर कहना ही क्या है, और भी ऊंचे दर्जे की बात। भगवान को कैसे, कि जैसे अभी आपको बताया चेष्टा कर्माणी मई सन्य सम्मत पर है बुद्धि योग उपासित मत चित्त सत्संग भव। चेष्टा माने चित्त से सारे कर्मों को भगवान कहते हैं कि मुझ परमात्मा में तू समर्पण कर दे और तू मेरी शरण आ जा, तू भी मेरी शरण आ जा। और बुद्धि योग को आश्रय करके और तू निरंतर मुझ परमात्मा में चित्त को लगा दे, फिर बेड़ा पार। इस प्रकार से थी भगवान के समर्पण करना, यत करोसी यद यदनासी यज्जु होसी ददासी यत, यह तब से सिकोन्ते तद कुरुषो मदर्पणम सुभाषु फले रही है मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामु पविष्यसि। यह भगवान ने गीता की 9वें अध्याय के 27 और 28 के श्लोक में खुलासा बता दिया कि भगवान के कर्मों का समर्पण करना क्या है, उसका फल भी बता दिया कि भगवान कहते हैं यत करोसी जो कुछ तू करता है, यद असरासी जो कुछ तू खाता है, और जो कुछ होम करता है, जग करता है, दान देता है, वह सब का सब तू मेरे समर्पण कर दे। तो क्या होगा इससे, शुभ और अशुभ कर्मों का जो फल है उस कर्मों के फल के बंधन से थी तू छूट जाएगा, फिर बोले फिर तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो कितनी महिमा की बात बतलाइए। तो इसके बीच के बाद थोड़ा कर्तापन का ये भाव आया कि भगवान के प्रति कुछ समर्पण किया, और उसके बीच के बाद तो और भी कुछ कोटि की बात है कि करता हुआ स्वयं एक प्रकार से मैं करता हूं ये माने ही नहीं। तो भगवान के अपने समर्पण करना क्या है कि अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दी, कि ये मेरा शरीर जो है सब आपकी चीज आपको सौंप दी। इसी प्रकार से त्यपने से होने वाली जो सारी क्रिया है उसकी भी बागडोर भगवान के हाथ में दे दे हुए, हमारी इंद्रिया और हमारे घोड़े, इंद्रिया जो है सो हमारे घोड़े हैं और मन जो है एक प्रकार से इनको भगवान को सौंप देवे, फिर भगवान इच्छा हो जैसे नचा हो इनको, तो बहुत जल्दी अपने आत्मा का सुधार हो जाता है। तो बोलो हम कैसे समझें कि हम हमारी बागडोर भगवान अपने हाथ में ले ली। बोले जब आपके कर्म शुद्ध हो जावे, कर्मा में कोई प्रकार से झूठ कपट चोरी व्यभिचार आदि कोई रत्ती भर भी दोष नहीं आवे, तो ये समझना चाहिए भगवान का हाथ है। और यदि बुरा काम होने लगे, झूठ कपट चोरी व्यभिचार मदरापान मांस भक्षण और जुआ आदि, तो समझना चाहिए कि काम का हाथ है, काम काम एक प्रकार से हमारे पर सवार हो रहा है, भगवान का हाथ नहीं। या कसौटी है, भगवान का हाथ होगा तो फिर हमारे से भूल होने की ही नहीं, और जब तक भूल होती है तब तक एक प्रकार से भगवान का हाथ नहीं है। तो यह खास बात समझनी थी। तो यह बात आपको बताई कि इच्छा का त्याग कर करके और हम कर्म करें तो हमारे सारे बंधन छूट जाए। बार बार यह बात कही कि कर्मण्यवादी कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेशु कदा चरे। अर्जुन तेरा कर्म करने में ही अधिकार है और उसके फल के माँ नहीं, इस वास्ते तो फल की इच्छा मत कर। और कर्म और माँ कर्म फले तुरभुर माते समस्त कर्मणी, कर्म के फल का जो हेतु है यानी कर्मों के माँ आसक्ति या कर्मों में ममता या एक प्रकार से कोई भी प्रकार का हेतु है तो वो भी हमारे लिए पतन का हेतु होता है। इसलिए कर्म के फल का हेतु भी तू मत बन, भगवान अर्जुन को कहते हैं। और कर्म के न करने में भी प्रीति मत कर, तो कर्म तो करना ही चाहिए किंतु निष्काम भाव से करना चाहिए। कामना का त्याग करके कर्म करने से मुक्ति हो जाती है, उसी का नाम निष्काम कर्म है। और निष्काम कर्म के समान और कुछ भी नहीं है, कोई भी कर्म नहीं है निष्काम कर्म के समान। ध्यान रूपी जो क्रिया है और वो सहकाम है तो वो भी निष्काम से उसका दर्जा नीचा है, क्योंकि ध्यानात कर्म पर त्याग त्याग स्थानांतरम। ध्यान से भी कर्म पर का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से शांति मिलती है। तो यह बात आपको बताई कि कोई भी बात की इच्छा करना है ये तो बिल्कुल मूर्खता है, और इच्छा के त्याग से शीघ्र कल्याण हो जाता है। तो हम देखते रहे, बस देखते रहे, भी एक जबर बात बताई जाती है जो हर वक्त शांति आनंद आपको बना रहे और हंसते हंसते आपकी मुक्ति हो जाए, वो यह है कि जो कुछ एक प्रकार से थी परीक्षा से अनिच्छा से कार्य हो रहा है, अपने शरीर से भी जो कुछ हो रहा है इसका दृष्टा साक्षी होकर के देखता है और इसको भगवान की लीला समझता है। अपने द्वारा जो कार्य हो रहा है वो भी भगवान की लीला, और किसी के भी द्वारा जो कार्य हो रहा है वो भी भगवान की लीला। इस प्रकार से हम भगवान की लीला मान लेवे तो हर वक्त प्रसन्नता शांति होते रहे और आनंद का कोई ठिकाना भी असर नहीं रहे और हंसते हंसते तो मुक्ति हो जाए। किसी के द्वारा चेष्टा हो रही, दूसरों के द्वारा न्याय या अन्याय जो भी कुछ हो उसमें हमको विचार करने की आवश्यकता नहीं, किंतु अपने मन बुद्धि और शरीर के द्वारा जो शास्त्र के विपरीत चेष्टा होने लगे तो उसे तो लीला नहीं समझनी चाहिए। वहाँ भगवान का हाथ नहीं है, वहाँ तो काम का हाथ है, उस काम को मारना चाहिए। अपने द्वारा कोई पाप कर्म हो गए तो ये समझना चाहिए कि वो पाप कर्म नहीं तो हमारे प्रार्थ होता है, अरे भगवान का हाथ है, वो तो काम और क्रोध का हाथ है, इसलिए काम और क्रोध को एकदम मार डालना।
करना थी, उसके धोखे में फंस करके के, और ऐसा नहीं मानना थी कि मैं जो एक प्रकार से क्रोध करता हूँ या पाप करता हूँ या मेरे में जो लोभ और कामना है उससे ये क्रिया होती है। कामना है वहाँ एक प्रकार से अनर्थ है, कामना के तो त्याग की बात है, तो कामना तो होनी नहीं थी, और बिना कामना के बिना पाप नहीं होता। काम इस क्रोध इस तरह जो गुण समुद्र है, मां तब मां पाप मां विद्या विवरिणम। इसके पूर्व में अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु मैं पाप करना नहीं चाहता, किंतु उसे कौन पाप करवाता है, अतः के प्रयुक्त पापम करती पुरुष अनिच्छन विवास ने बला दिए नियोजित। ये भगवान ने गीता की तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में कहा अर्जुन ने, अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन कहता है ये भगवान अच्छा केन परिवतो अयं पुरुष है पापम करती, माने ये पुरुष किसका प्रेरणा हुआ पाप का आचरण करता है, अनिच्छा माने इसकी इच्छा नहीं है, इच्छा का बिल्कुल त्याग कर दिया इसने, और बिना इच्छा के भी माने बलात्कार से माने कोई से पाप करवाता है तो कौन पुरुष है। तो भगवान ने कहा कि काम इस क्रोध से, ये जो काम है ये क्रोध है, रजोगुण समुद्र है, जिससे रजोगुण काम है ये क्रोध है, और रजोगुण से इसकी उत्पत्ति हुई है, और ये मान खाने वाला है, और मान पापी है, इस वास्ते इसको तुम मार डाल। आनंद तो हंसता हंसता भगवान की प्राप्ति हुआ। तो यह एक रहस्य की बात है, छुपी हुई बात। जैसे 22 को मैं तपस्या है ना, इसी प्रकार से आपको मान लेना कि भैया भगवान को 22 को है, अरे बिना पैसा दिखाओ है। अरे इसको 22 को कैसे दुनिया में नहीं मिले। अरे यो दूसरा दुकानदार थो, उसने ये निश्चय कर लिया कि इसको क्रोध चला कर छोड़ना, तो वो जो कुछ बात बोले उसकी बात काट दे, उसको विपरीत ही विपरीत बोले, और वो हंसता ही रहे, मैंने क्रोध हो ही नहीं। तो एक दिन जो है उस बनिया ने कहा जो क्रोध नहीं करता है उसको, तो भैया एक काम कर, तू परोपकारी है तो मैं मेरे ससुराल में जाऊंगा, तो ये लाडवों की हांडी तू तेरे सिर पर धर करके मेरे साथ ले जा, यदि ऐसे भगवान भी है तो बोले भी बहुत ठीक है। तो उसके सिर पर कोरी हांडी रख दी, और इसमें बोला कि लाडू पेड़े भरे हुए हैं, और भरा हुआ उसमें कादा 30 पैसा, अरे वो खाम करके के, अरे बोले चलो आगे वो चले गए पीछे पीछे लाठी लेकर, वो चले जब ठीक बाजार के वहां पूछा सरकारी आदमी वहां खड़े हैं, वहां जाकर लाठी पीछे से लाठी मारकर गाड़ी को फोड़ दी, फोड़ने से गए सारे शरीर पर 30 पैसा सारे मेरे लग गया, और सामने खड़े होकर हंसे, अरे वो भी हंसे। तो मुझे पूछा भाई क्या, अरे मूर्ख तू क्या हंसता, मैं तो हंसता हूँ, उसको ठीक है हंसता हूँ, तेरी कैसी दुर्दशा हो रही है इसको देखकर मैं हंसता हूँ, तू तेरी तरफ तो देख। तो बोला भाई कि मैं भी ठीक क्या हंसता हूँ, तो तुम ठीक क्या हंसते हो, देखो भगवान की हमारे पर कितनी दया है, भाई को उपदेश का जो खड़ा कर दिया, जो बारम्बार पक्का करें कि जिसमें पास ऐसे में पास होने के लिए तुम्हारे जैसे पुरुषों को हमारे हमारे को शिक्षा द्वार मेरे को यह हंसी का विषय है कि एक प्रकार से नारायण 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 नारायण।